हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं अनाही के ऑफिस में अनाही काम कर रही थी, तो वहीं रूहान उसके पास बैठा, कभी उसकी कमर को छेड़ रहा था तो कभी उसके कंधे को। अनाही ने इरिटेट होते हुए कहा, रूहान जी क्या चाहिए आपको, काम करने दीजिए ना, और आप ही काम कर लीजिए जाकर। रूहान ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, मैडम जी आपने एक महीने पहले मुझसे कहा था कि हम लोग हनीमून पर जाएंगे और अभी तक आप सिर्फ काम ही कर रही हैं, बताइए ना हम कब जाएंगे। रूहान बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। फिर अनाही ने रूहान के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली, आपको इन्वेस्टर मिल गया ना, तो मैं चाहती हूँ आप एक डेढ़ महीने अपने ऑफिस को बनवाने में ध्यान दें, उसके बाद आपको काम भी शुरू करना है और हम हनीमून मनाने एक स्पेशल दिन पर जाएंगे और वो मैंने डिसाइड कर रखा है, जब भी वो दिन आएगा मैं आपको बता दूंगी, आप परेशान मत होइए। रूहान ने एक झटके से अनाही की चेयर को पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लिया और फिर अनाही की कमर को अपने दोनों हाथों से होल्ड करते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो स्पेशल दिन कौन सा है। अनाही ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर और फिर आगे बढ़कर आहिस्ता से उसके माथे पर किस करते हुए बोली, नहीं अगर आपको बता ही दूंगी तो आपके लिए सरप्राइज़ क्या होगा, और प्लीज़ आप ज़िद मत करिए ना, मैं नहीं चाहती बार बार आपको मना करूं और आप उदास हो जाएं, आपको विश्वास है ना अपनी मैडम जी पर। इतना बोलकर अनाही ने रूहान की आंखों में देखा तो रूहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आप पर विश्वास है। अनाही ने आगे बढ़कर आहिस्ता से रूहान के होंठों पर किस कर लिया। वो उससे अलग हो पाती उससे पहले ही रूहान ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और फिर उसके होंठों पर बिना रुके किस करने लगा। अनाही को नहीं पता था उसकी छोटी सी किस इतनी लंबी हो जाएगी और वो फिलहाल सिवाय झटकने के कुछ नहीं कर सकती थी। जूली जो तेज़ कदमों से उसके केबिन में आ रही थी, दरवाजे से ही उसे रूहान और अनाही के किस करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने नज़र उठाकर सामने देखा, रूहान चेयर पर बैठा था और अनाही उसकी गोद में। ये देखकर जूली ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया और तूफ़ान की स्पीड से कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए बोली, हे भगवान मुझे क्या क्या देखना पड़ता है, पहले वेदांत सर और उनकी वाइफ और अब अनाही मैडम और उनके पति, अपना हनीमून आराम से ऑफिस से बाहर क्यों नहीं बना लेते हैं ताकि हम जैसे सिंगल लोग भी खुश हो जाएं? पता नहीं मेरी ज़िंदगी का राजकुमार कब आएगा और कब मुझे अपना बनाएगा, ये लोग बस मेरा खून जलाते रहते हैं। थोड़ी देर के किसके बाद रूहान ने अनाही को छोड़ दिया, जिसके साथ ही अनाही ने लंबी सांस भरते हुए कहा, आपकी किस कभी ना कभी मेरी जान ले लेगी। रूहान ने उसके सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, उससे पहले ही आपकी जान जाने लगी है। अनाही ने आहिस्ता से उसके सीने पर मारते हुए कहा, कितने बेशर्म हो गए हैं आप। शाम के वक्त एक तरफ सर्वेंट और अनाही मिलकर सब लोगों के लिए डिनर रेडी कर रही थीं, तो वहीं उनके पास खड़ा वेदांत भी किसी मास्टर शेफ़ की तरह अपनी टोमेटो के लिए खाना बना रहा था। साथ साथ में वो और अनाही ऑफिस के बारे में भी कुछ बातें कर रहे थे। वेदांत ने प्याज काटते हुए कहा, देख रही हो या नहीं तुम्हारी छोटी बहन मुझे कितना रुलाती है, मेरी आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। अनाही जो आटा गूंध रही थी उसने हंसते हुए कहा, बाप बनने की जल्दी तो आप ही को थी, मेरी बहन की इसमें क्या गलती है, आपको क्या लगा था कि एक पति और पिता बनना इतना आसान होता है, ये सब तो आपको करना पड़ेगा, वो भी बिना शिकायत किए, क्योंकि अगर गलती से आपकी टमाटो ने सुन लिया कि आप इसकी शिकायतें कर रहे हैं तो मुंह फुलाकर बैठ जाएगी और फिर आपके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वेदांत ने आंखें छोटी करके कहा, मैंने इकलौती दोस्त बनाई और वो भी मेरी साइड नहीं लेती है। अनाही ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, इसका मतलब है आपकी चॉइस दोस्त बनाने में भी बेहद खराब है। ठीक उसी वक्त राविया किचन के अंदर आई, उसने हंसते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो कितनी अच्छी हो, आपको दोस्त बनाना मतलब उसकी चॉइस सबसे ज्यादा अच्छी होगी। इतना बोलकर वो अनाही के पास आई और उसकी हेल्प करने लगी। वेदांत ने आंखें छोटी करके कहा, तुम सब लोग एक टीम क्यों बना लेते हो, मेरी भी हेल्प किया करो ना कभी खाना बनाने में। राविया ने गहली सांस छोड़ते हुए कहा, आपको सिर्फ अपनी पत्नी का पेट भरना है और अनाही दी पूरे परिवार के लिए खाना बना रही हैं, तो अब आप ही बताइए मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या आपकी। वेदांत ने सब्जियों को ऑयल में फ्राई करते हुए कहा, बस बहाना चाहिए मेरी हेल्प न करने का। वहीं रूम के अंदर विहा को अचानक ही अपने पेट में दर्द हो रहा था, उसके प्रेगनेंसी क्रैम्प्स शुरू हो गए थे, इस वजह से उसको अचानक ही दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी मासूम आंखों में तुरंत आंसू भर आए थे, उसने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ते हुए सिसक कर कहा, प्लीज़ बेबी मम्मा को दर्द हो रहा है, डोंट हर्ट मी। वेदांत मुस्कुलाते हुए हाथ में ट्रे लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो ये सोचकर खुश था कि उसकी टमाटो उसके हाथ का बना खाना देखकर कितनी खुश हो जाएगी। जब वो बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसकी सारी हंसी एक पल में गायब हो गई। विहा बिस्तर पर करवट लेकर लेटी हुई थी, दोनों हाथ अपने पेट पर कसकर रखे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो छोटी छोटी सिसकियां ले रही थी, होंठ कांप रहे थे। वेदांत ने घबराते हुए कहा, टमाटो। फिर उसने ट्रे को जल्दी से साइड टेबल पर रखा और दौड़कर उसके पास जाकर बैठ गया। उसने विहा के कंधे को हल्के से छुआ। क्या हुआ बेबी, कहाँ दर्द हो रहा है? विहा ने धीरे से अपना सिर वेदांत के कंधे पर रखकर रोते हुए कहा, वेदांत बच्चे को बोलो ना मुझे दर्द ना करे, मेरे पेट में ऐसे दर्द हो रहा है जैसे कोई चाकू डालकर घुमा रहा हो। इतना बोलकर विहा बेतहाशा रोने लगी। उसे इस तरीके से रोता देखकर वेदांत का चेहरा सफेद पड़ गया। विहा को पहले भी प्रेगनेंसी क्रैम्स हुए हैं लेकिन इस तरीके से कभी नहीं रोई है। इस वजह से वेदांत को उसके लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने तुरंत विहा के पेट पर हाथ रखा। उसका पेट कसकर सिकुड़ा हुआ था जैसे कोई मांसपेशी ऐंठ रही हो। विहा फिर से सिसक पड़ी और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। वेदांत की आंखों में भी नमी उतर आई। उसने आहिस्ता से विहा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बस करो टमाटो, रोना बंद करो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इतना बोलकर वेदांत ने जल्दी से अपना फोन उठाया और डॉक्टर को कॉल कर दिया। रिंग जा रही थी और वेदांत की धड़कनें भी उसे रिंग के साथ ही बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था उसका दिल किसी भी पल सीने से बाहर निकल आएगा। उसे अपने गले में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी टमाटो उसके सामने रो रही थी और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फोन कॉल उठा लिया था जिसके साथ ही वेदांत ने बिना उसके कुछ बोले ही लगातार बोलना शुरू कर दिया, प्लीज डॉक्टर जल्दी आओ, मेरी वाइफ को बहुत पेन हो रहा है। आपने तो कहा था कि वो दवाई लेने के बाद उसे कुछ नहीं होगा लेकिन ये तो इस तरीके से रो रही है। डॉक्टर ने तुरंत ही अपना इमरजेंसी किट उठाया और फिर वेदांत को शांत करवाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए सर, आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा, ऐसा पेन होना नॉर्मल होता है, मैं बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। वेदांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं 10 मिनट में नहीं, तुम और भी जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी आ जाओ, ये बहुत ज्यादा रो रही है। इतना बोलते बोलते वेदांत का गला भी भर आया था और उसने कॉल कर दिया। फिर उसने विहा की तरफ देखा जो आंखें बंद करके अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी।
वेदांत ने उसके माथे को चूमकर कहा, टमाटो कुछ नहीं होगा बच्चा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, बस थोड़ी देर में डॉक्टर आती होगी, फिर तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर वेदांत ने विहा का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर लिया और अब वो उसके पूरे चेहरे पर धीरे धीरे किस कर रहा था ताकि विहा का ध्यान उसके दर्द से भटक जाए। वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। अब विहा बस उसके शर्ट की कॉलर को अपनी मुट्ठी में भरे हुए उसके किस को फील कर रही थी।